गायिकाएं गाकर प्यार क्यों निभाएं सिर्फ एक देह के साथ, लंटीन के फूल जो एक साथ सौ सौ खिलते हैं, अब उन्हें बीन कर एक ही डोरी से क्यों बांधें। भागवत गाकर दोनों ने बेसुध होकर अपने तन ही उतार फेंके और उनके हंसते हुए कटे मस्तकों से रक्त बहने लगा। लड़की ने उन मस्तकों को ऊपर उठाया तो वह उस रक्त से नहा गई, नहाकर आरक्त हो गई और फिर वह स्वच्छंद गाती और नाचती रही। गायिकाएं दोनों स्तनों पर एक एक शेष, दोनों आंखों के लिए एक एक पुतली, दोनों बाहों से दोनों का अलग अलग आलिंगन, जिसकी मुझे न लज्जा है न चिंता। धरती के अंतर में रक्त बरसता है, आकाश में गीत की कोपलें फूटती हैं। देवदत्त आकर मंच पर रखी कुर्सी पर बैठता है, मुख पर हल्के रंग का मुखौटा है, दुबला पतला चिंताग्रस्त है। कपिल प्रवेश करता है, मुख पर गहरे रंग का मुखौटा है, हट्टा कट्टा और प्रसन्न है। कपिल उमंग से, देवदत्त तुमने कहा था कि आज अखाड़े में आऊंगा, लेकिन आए क्यों नहीं, बड़ी देर तुम्हारी राह देखता रहा। देवदत्त ध्यान देने बिया दिए बिना, किस काम से। कपिल तुम्हें आना चाहिए था देवदत्त, कहा नहीं था, गांधार देश का एक मल्ल अखाड़े में आने वाला है, वह आज आया था, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया। गांधार देश का मल्ल कहते हैं दक्षिण की दिग्विजय पर निकला है, फिर हमारे अखाड़े का नाम सुना था, इसलिए इधर भी आजमाइश करने की इच्छा हुई। उस समय मैं और नंद कुश्ती लड़ रहे थे, परदेशी मल्ल बैठा देख रहा था। मैंने जो ही नंद को मगरमच्छी पेंच डाला, नीचे पछाड़ा तो परदेशी मल्ल खुशी से उछलकर बोला, वाह बहादुर, और उसने मुझे चुनौती दी। मेरा दिल धड़कने लगा था। फिर भी देवदत्त को अन्य मनस्क देख कपिल चुप हो जाता है। देवदत्त एकाएक चौंक कर, फिर। कपिल फिर क्या। देवदत्त घबराया सा, नंद। हाँ, नंद ने क्या किया। कपिल बांसुरी बजाई। देवदत्त और घबरा कर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है गांधार देश के मल्ल के बारे में कुछ कह रहे थे ना। कपिल वह कुछ देर मुझसे कुश्ती लड़ा, फिर पीठ ठोक कर बोला, शाबाश। देवदत्त सच। कपिल हाँ, इस बार कौन। देवदत्त सक पका कर, हूँ क्या। कपिल मैंने कहा इस बार कौन। देवदत्त कौन क्या। कपिल मैं पूछता हूँ इस बार कौन सी लड़की है। देवदत्त घबराहट में, कोई नहीं। कपिल अरे बताओ ना, शर्माते क्यों हो। देवदत्त तुम कैसे जान गए। कपिल हद हो गई, पिछले दो वर्षों में कम से कम 15 लड़कियों पर तुम्हारा मन डोलते देखा है, फिर कैसे नहीं जानूंगा। देवदत्त कपिल अगर मेरी हंसी उड़ाना है तुम्हारा। कपिल नहीं नहीं, हंसी नहीं देवदत्त, 15 बार मुझसे कोई बात नहीं छिपाई तो आज एकाएक क्या हो गया। देवदत्त कपिल उनकी इससे कोई बराबरी नहीं, वे सब तो इसके आगे जैसे। कपिल चांद के आगे तारे हों, जगमगाते दीपक के सामने टिमटिमाते जुगनू हों, यह भी तो 15 बार हो चुका है। देवदत्त चिढ़ कर, तो तुम घर चले जाओ, मुझे सताओ मत। कपिल अरे इतनी सी बात पर चिढ़ गए। देवदत्त तुम मेरे मित्र बनते हो पर तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। कपिल और तुमने मुझे समझा है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं तो बात बात पर चिढ़ते नहीं। तुम कहो तो मैं कुएं में कूद जाऊं, आग पर चलूं, तुमसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। कहो तो अपने माता पिता को भी तुम पर निछावर कर दूं। देवदत्त तंग आकर, फिर छेड़ दिया अपना राग, कम से कम 50 बार सुना चुके हो। कपिल तो क्या 91वीं बार सुनाने को तैयार हूँ। तुम्हारे बिना मैं पता नहीं कहाँ पड़ा सड़ा रहता, बैल की तरह घास पर मुंह मारता, धूल उड़ाता आवारा। तुम्हारी संगत मिली तो कविता से कला से परिचय हुआ, पशु से मनुष्य बन गया। देवदत्त क्रुद्ध होकर, अब तुम हटोगे या नहीं यहाँ से। सबसे भाग कर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी आ गए और शुरू कर दी अपनी काव काव। काव्य और कला तुम क्या समझोगे। जा चला जा अपनी भट्टी पर, वही है तेरी जगह। कपिल दुखी होकर, सचमुच चला जाऊं? देवदत्त, हाँ हाँ अभी। कपिल सिर झुकाकर, ठीक है कहते हो तो जाता हूँ, चलता है। देवदत्त, नहीं बैठो। कपिल यही चाहता था, खुशी से जमीन पर बैठ जाता है, पर बोलो मत। यह कहकर देवदत्त उठकर नीचे धरती पर बैठता है। तुरंत कपिल उठता है, कुर्सी साफ करता है और इशारे से ऊपर बैठने को कहता है। देवदत्त सिर हिलाकर मना करता है और कपिल की ओर पीठ किए बैठता है। अब कपिल एकदम आगे आग्रह करने लगता है। देवदत्त नहीं मानता तो कपिल उसकी बांह पकड़कर बिठाने की कोशिश करता है। मजबूर होकर देवदत्त उठता है। तुम बस पीछे पड़ जाते हो। देवदत्त कुर्सी पर बैठता है, कपिल जमीन पर सिर झुकाए बैठा रहता है। बड़ी देर तक चुप्पी रहती है। धीरे से, बुरा मत मानो कपिल, लेकिन उस लड़की का कैसे वर्णन करूं? उसकी लटें हैं मानो लहराते भौंरे, मुख मानो। बोलते बोलते देवदत्त आविष्ट हो जाता है। उसी के साथ कपिल भी उत्साह से स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगता है, जैसे सब उसे कंठस्थ हो। दोनों श्वेत कमल हो, सुंदरता की झरती मानो चंद्रमा की उजियारी हो, बाहें मानो कमल की नाल हो, उरोज अमृत के कलश और कट मानो। देवदत्त रुक कर सावेश। नहीं नहीं भूल हुई। कपिल, क्या? देवदत्त, आज तक मैं एकदम अंधा था। मैं इस धोखे में था कि कविता समझता हूँ, पर इस अनिंद्य रूपवती को देखने से पहले मैं कालिदास की काव्यश्री को समझता ही नहीं था, कुछ नहीं समझता था। तन्वी श्यामा दोनों, शिखर दसना पवन बिम्बा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणे निम्न नाभि। देवदत्त, श्यामा नायिका कालिदास के जादुई वर्णन से उपजी वात्स्यायन की स्वप्न सुंदरी, पल भर की झलक में ही वह प्रणय काव्य में मेरी गुरु बन गई। वह क्या स्वयं प्रणय में मेरी शिष्या बनना कभी स्वीकार करेगी कपिल? कपिल स्वगत, यह तो सचमुच नई बात है। देवदत्त तनिक रुक कर चमकती आंखों से, कपिल वह बस मेरी कविता की प्रेरणा बनना स्वीकार कर ले तो मैं कालिदास से भी श्रेष्ठ काव्य रच डालूं। कपिल वैसे ही उत्साह से, तो रच डालो ना। देवदत्त, कैसे रचूं कपिल? उसके सामने हुए बिना कैसे रचूं? मन को कविता पर कैसे एकाग्र करूं जबकि मेरा रोम रोम उसके ध्यान में डूबा हुआ है, उसी के लिए तड़प रहा है। कपिल, उसका नाम क्या है, कम से कम इतना तो बताओ। देवदत्त, उससे क्या लाभ जबकि वह रूप से मुझ जैसे के लिए बनी ही नहीं। कपिल, तुम इस तरह घबराते हो देवदत्त? तुम विप्रोत्तम विद्यासागर के सुपुत्र, प्रकांड पंडित, विख्यात काव्य रसिक, कामदेव से रूपवान, बृहस्पत से। देवदत्त, मेरी प्रशंसा से सांत्वना मत दो। कपिल, प्रशंसा नहीं, तुम्हारे लिए तो धर्मपुरी की हर कन्या के माता पिता आंखों के पावड़े बिछाए तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। देवदत्त, नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह सुंदरी सपने में भी मुझे नहीं मिल सकती, पर क्या करूँ, मन नहीं मानता। कपिल, तुम्हारी सौगंध मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि कभी यह रूप रत्न मुझे मिला तो मैं महाकाली के चरणों में अपनी दोनों भुजाएं भगवान रुद्र के आगे अपना मस्तक समर्पित करूंगा। कपिल, छी बको मत। स्वगत, इस 16वीं लड़की ने सचमुच हमारे देवदत्त को बुरी तरह से परास्त किया लगता है, नहीं तो रक्तपात की बात कभी नहीं करता। देवदत्त, झूठ नहीं कपिल, उसके बिना ये हाथ यह मस्तक किस काम के हैं? उसके बिना मेरा काव्य जीवित ही कैसे रहेगा? शाकुंतलम से श्रेष्ठ काव्य रचना अब नहीं होगी, लेकिन यह सब उसे कैसे बताऊं? मेरे पास न मेघदूत है न भ्रमर, अब तो बस पावन वीथि में खड़े खड़े तपस्या करना ही मेरे भाग्य में है। कपिल, पावन वीथि, वहाँ क्यों? देवदत्त, वहीं वह रहती है। कपिल, तुम्हें कैसे पता? देवदत्त, कल संध्या को पावन वीथि में ही उसे मैंने देखा था, नजर हटाते नहीं बनी और उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। कपिल, छी छी, लोगों ने क्या कहा होगा? देवदत्त, पावन वीथि के एक घर के भीतर वह ओझल हो गई, मैं वहीं बाहर सांझ भर खड़ा रहा, पर वह फिर नहीं आई। कपिल, कैसा घर था? घर का रंग? देवदत्त, याद नहीं। कपिल, कितनी मंजिलें थी? देवदत्त, ध्यान नहीं दिया। कपिल, यानी उस घर के बारे में किसी चीज पर नजर नहीं गई? देवदत्त, उसके घर के द्वार की चौखट पर दो सिर वाला पक्षी खुदा हुआ था, बस यही देखा। द्वार खटखटाने के लिए उसने हाथ उठाया तो वह पक्षी से छू गया। पल भर को लगा जैसे पक्षी जीवित हो उठा। कपिल एकदम उछलकर, तो अब तक क्यों नहीं बताया? बिना बात देर कर दी। देवदत्त, क्या मतलब? कपिल, देवदत्त तुम्हारा मेघदूत हंस कपोत तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुम्हें पता तक नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर उस लड़की के घर और नाम दोनों का पता लगा लाता हूँ। देवदत्त अविश्वास के भाव से, कपिल कपिल कपिल, मुंह क्या देखते हो? तुम यहीं बैठो चुपचाप, मैं अभी आया। देवदत्त, कपिल तुम्हारा उपकार। कपिल जाते जाते, बस बस बस, पर सुनो, अब भुजा मस्तक की वे सारी बातें भूल जाओ। इस काम के लिए न दुर्गा चाहिए न रुद्र, मैं अकेला ही काफी हूँ। जाता है। देवदत्त एकाएक आशंकित होकर, लेकिन कपिल कपिल, गया चला ही गया। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरा एक मित्र है, पर उसे भेज कर मैंने भूल तो नहीं की। कपिल से यह काम संभलेगा? खेती बारी लुहारगिरी कुश्ती में तो वह जादूगर है, पर अपढ़ है, व्यवहार कुशल नहीं, उसे भेजना ठीक नहीं हुआ। वह मेरी रही सही आशाओं पर भी पानी फेर देगा। माँ काल के प्रभु रुद्रदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलूंगा। वह मिली तो मेरी भुजाएं और मेरा मस्तक आपके चरणों में चढ़ेंगे। जाता है, भागवत कुर्सी हटाता है। कपिल प्रवेश करता है। कपिल, यही है पावन विधि, व्यापारियों की गली। बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े घर हैं, मानो महल हों। आश्चर्य है ऐसे घरों की भूल भुलैया में लोग खो क्यों नहीं जाते। अब वह दो सिर वाला पक्षी खोजने लगता है। क्या? यह तो गरुड़ है और यह कमल है, यह हुआ सिंह, यहाँ शेर है, यह है चक्र और यह सिर खुजला कर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और यह चिढ़कर चिह घोड़ा गैंडा, फिर एक सिंह, एक और कमाल और चिढ़कर। कहाँ है वह दो सिर वाला पक्षी? फिर पीछे मुड़कर बड़ी बारीकी से देखता हुआ आता है और खुशी से चीख पड़ता है, हाँ यही है, यही है, मेरी आंखों से छूट ही जाता, कितनी बारीकी से खुदा हुआ है, आंखें फोड़ो तो दिखे शायद। तो अब किसका होगा यह घर? इधर उधर देखता है, किससे पूछूं? आसपास किसी की छाया तक नहीं, इस चिचिलाती धूप में कौन यहाँ आएगा? घर वालों से ही पूछ लूं। द्वार खटखटाने का अभिनय करता है और सुनने लगता है पायल की झनक। पद्मिनी कोई गीत गुनगुनाती प्रवेश करती है। पद्मिनी, आयो रे पहुना सवार, न जाने किस देश का है सरदार। कपिल मुंह बाए पद्मिनी को देखता रह जाता है। स्वागत, मान गया देवदत्त, मान गया, समझता था अपनी मंडली में रंभा सजने वाली रागिनी से श्रेष्ठ सुंदरी इस संसार में है ही नहीं। पर यह, इसे यक्षिणी कहूँ, इंदुमती कहूँ, उर्वशी कहूँ, सब एक साथ। पद्मिनी, आपने द्वार खटखटाए, ऐसे मूरत बने क्यों खड़े हैं? कपिल घबरा कर, नहीं नहीं, जानना चाहता था यह घर किसका है। पद्मिनी, आपको किसका घर चाहिए था? कपिल, यही घर। पद्मिनी, तो इस घर में किससे काम है? कपिल, इस घर के स्वामी। पद्मिनी, उनका नाम जानते हैं? कपिल, नहीं। पद्मिनी, उन्हें पहचानते हैं? कपिल, नहीं। पद्मिनी, मिले नहीं, देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति से आपको क्या काम है? कपिल स्वागत, ठीक तो कहती है, उनसे मेरा क्या काम है, सिर्फ उनका नाम चाहिए। पद्मिनी, सचमुच आप इसी घर की तलाश में थे या कहीं भूल से तो इधर नहीं आ गए? कपिल, नहीं नहीं, यही घर है। पद्मिनी, अपने माथे पर उंगली रखते हुए, यह ठीक है ना? कपिल चौंक कर, हाँ हाँ। पद्मिनी, और आंखें ठीक हैं? कपिल, हाँ। पद्मिनी, दाएं हाथ की चार उंगलियां दिखाकर, कितनी उंगलियां हैं? कपिल, चार। पद्मिनी, अच्छा आंखें तो ठीक हैं, फिर माथा भी ठीक ही होगा, आप कहते हैं तो, मगर यह घर यही है तो हर दरवाजे पर क्या झांकते थे और बड़बड़ा क्या रहे थे? कपिल चौंक कर, आप कैसे जान गई? पद्मिनी, मेरा माथा भी ठीक है और आंखें भी। कपिल, अच्छा ऊपर की मंजिल से देख रही थी? पद्मिनी धीमी आवाज में रहस्य के भाव से, सुनिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इस विधि में चोरों का बड़ा उपद्रव है और लोग बड़े शक्की हो उठे हैं। कल संध्या को यहीं पर कोई 2 घंटे पुतले की तरह खड़ा था और आज आप चक्कर लगा रहे हैं। अपना भाग्य सराहिए कि मैंने ही आपको देखा, कोई दूसरा होता तो आपको सीधे कोतवाल के पास पहुंचा देता। आवाज बढ़ाकर, अब ठीक ठीक बताइए आपको किससे काम है? कपिल, आपसे नहीं कह सकता। पद्मिनी, अच्छा फिर किससे कहेंगे? कपिल, आपके पिताजी। पद्मिनी, आपको मेरे पिताजी से काम है या इस घर के स्वामी से? कपिल, क्यों दोनों एक नहीं हैं? पद्मिनी, बच्चे को समझाने के ढंग से, सुनिए मेरे पिताजी इस घर के चाकर भी हो सकते हैं या इस घर का स्वामी मेरे पिताजी का चाकर हो या फिर मेरे पिता इसके स्वामी के भाई, बाबा, ताऊ, जमाई कुछ भी हो सकते हैं, क्यों ठीक है ना? कपिल, हाँ। पद्मिनी, ठीक है तो इनमें से किसे बुलाऊं? कपिल, पिताजी को बुलाइए। पद्मिनी, यदि वे नहीं हो तो? कपिल, और किसी को बुलाइए। पद्मिनी, भाई, बाबा, चाचा, ताऊ, जमाई, इनमें से किसे बुलाऊं? कपिल, किसी को बुलाइए। पद्मिनी, पर किसे? कपिल, जल्दी से, तो अपने भाई को। पद्मिनी, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? कपिल, नहीं। पद्मिनी, देखा है? कपिल, नहीं। पद्मिनी, नाम जानते हैं? कपिल तंग आकर, कृपा करके इस घर के स्वामी या आपके पिता या उन दोनों को, अगर दोनों अलग अलग हो तो उनमें से किसी को, दया करके किसी को बुला दीजिए। पद्मिनी खिलखिलाकर, नहीं वैसे नहीं चलेगा। कपिल आसपास देखकर, स्वागत, आसपास कोई नहीं पर देवदत्त को नाम तो बताना ही होगा, तभी से गरम तवे पर खड़ा मेरी राह देख रहा होगा, खाली हाथ लौटा तो कभी मुझे क्षमा न करेगा। जोर से, देखिए देवी जी, एक बहुत ही आवश्यक काम आ पड़ा है, आपके पांव पड़ता हूँ। पद्मिनी उत्सुकता से, हैं? मेरे पांव पड़ेंगे? सच बताऊं, आज तक मैंने ही इस घर के सबके पांव छुए हैं, मेरे किसी ने नहीं छुए, आप छुएंगे? कपिल माथे पर हाथ मारकर, हार गया, ची बोल गया, मिट्टी में मिल गया। देवी जी, अब तो कृपा कीजिए, घर के किसी नौकर को बुला दीजिए। पद्मिनी निराश भाव से, यानी मेरे पांव नहीं छुएंगे? मैं जानती थी, आजकल किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा द्वार खोला मैंने, मुझी को दरबान समझिए, बताइए क्या चाहते हैं? कपिल मन पक्का करके, अच्छी बात है, खड़े होकर, आप पंडित विप्रोत्तम विद्यासागर को जानती होंगी? पद्मिनी, संभव है। कपिल लंबी सांस भरकर, तो फिर उनके एकमात्र सुपुत्र देवदत्त को भी जानती होंगी, पिता से भी बढ़कर पंडित, महाकव्य, काव्य शास्त्र विनोद में पूर्ण पारंगत, सज्जन, गुणवान, स्नेहशील, सुकुमार, लंबे केश, तेजस्वी मुख, अवस्था 20 वर्ष, ऊंचाई 67 अंगुल। पद्मिनी, ओफो, पर यह 67 अंगुल आपका कौन है? कपिल, मित्र, संसार में सबसे पक्का मित्र, लेकिन अब मुख्य सवाल यह है कि मेरा मित्र आपका कौन होगा? अचानक मौन। पद्मिनी धीरे धीरे कपिल के शब्दों का इशारा समझने से लज्जा से लाल होकर, हाय मैया कहकर भाग जाती है। कपिल देखता रहता है। कपिल, मित्र देवदत्त, मेरा मन बेचैन हो गया, तुम तो सुकुमार हो, तुम्हारा चित्त भी सुकोमल है, एक कड़ी बात, एक कड़ा शब्द तुम सह नहीं पाते, और यह लड़की तो एकदम बिजली है, उतनी ही तेज और तीखी, तुम झेल नहीं सकोगे मित्र, इसे झेलने के लिए लौह पुरुष चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, समझाऊं भी तो तुम मानोगे नहीं, और मैं भी अब कैसे पीछे हटूं, इसके माता पिता से मिलकर ही जाऊंगा। उसी के पीछे भीतर चला जाता है। भागवत, अब यह अपने सुजान रसिकों को समझाने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ, जो होना चाहिए था वही हुआ, पद्मिनी धर्मपुरी के एक प्रमुख व्यापारी की सुपुत्री है, जिसके घर स्वयं लक्ष्मी बुहारी देती है और देवदत्त के घर स्वयं सरस्वती हाथ जोड़े खड़ी रहती है। फिर विलंब क्यों होता? विवाह सूचक संगीत पद्मिनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृहस्वामिनी बनी। देवदत्त भी कपिल का उपकार नहीं भूला। पुरानी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। देवदत्त पद्मिनी, पद्मिनी कपिल, धर्मपुरी के नागरिक इन्हें राम सीता लक्ष्मण जैसे समझने लगे। इस प्रकार 6 माह बीत गए देवदत्त और पद्मिनी का प्रवेश। पद्मिनी, बड़ी देर लगाता है यह कपिल, देखो ना अभी तक नहीं लौटा, खिड़की से बाहर देखने का अभिनय करती है। देवदत्त, कपड़े लगते सब ठीक ठाक बांध लिए? पद्मिनी, हाँ सवेरे ही। देवदत्त, और बिस्तर? हो सकता है बाहर खुले में सोना पड़े, सर्दी है, कम से कम 2 कंबल भी चाहिए। पद्मिनी, तुम चिंता मत करो, नौकर ने 3 बांध दिए हैं। देवदत्त, और तुम्हारे लिए शाल, गरम कपड़े? पद्मिनी, आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो पुस्तकों में ऐसे डूब जाते थे कि भोजन के बाद हाथ धोने का भी ध्यान नहीं रहता था, और आज सवेरे से रट लगाए हो कि वह हुआ या नहीं, यह बना या नहीं। देवदत्त, पद्मिनी मैं 10 बार कह चुका हूँ, तुम्हारी इस दशा में यह यात्रा मुझे पसंद नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। वह गाड़ी न जाने कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पद्मिनी, पर मुझे क्या हुआ है, तुम बिना बात चिंता करते हो, क्या दूसरी कोई स्त्री कभी इस संसार में गर्भवती नहीं हुई, इतने डरते हो? मैं जरा सी हिली डुली नहीं कि बस तुम्हें लगता है आसमान फट पड़ा, सब खत्म। देवदत्त, राम राम, ऐसी बात मत कहो। पद्मिनी हंसकर, भूल हुई, लो जीभ काट लेती हूँ। देवदत्त, तुम्हें तो कोई दुविधा नहीं, जो आए जी में बक्ति घूमती रहती हो छोटे बच्चों की तरह, दिन भर उछल कूद मचाती हो। और पद्मिनी खिड़की के पास जाकर, कितनी देर लगा रहा है यह कपिल? देवदत्त, और दिन भर बस कपिल कपिल कपिल। पद्मिनी चकित, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? देवदत्त, क्यों नहीं कहूँ, उस दिन भास का नाटक तुम्हें सुनाना चाहता था, लेकिन उसी समय कपिल टपक पड़ा। पद्मिनी, ओह तो वह बात चुभ रही है अभी तक, इसके लिए मुझे क्यों कोसते हो, तुम्हारा ही तो मित्र है, तुम ही तो कहते थे कि विवाह से पहले भी रोज आया करता था। देवदत्त, लेकिन अब मेरी पत्नी भी है, इतना भी नहीं समझ सकता, पहले की तरह अब भी आना जाना कैसे संभव है? पद्मिनी, बेचारा, उस पर क्यों बरसते हो, भूल मेरी थी, वह तो अपढ़ है, तुम्हारे साथ रहकर उसकी भी कविता में दिलचस्पी हो गई होगी, यह सोचकर मैंने ही उससे आने को कहा था, उसने इनकार भी किया था, लेकिन मैंने ही जिद की। देवदत्त, हाँ मुझे पता है। पद्मिनी, तुम बढ़िया काव्य पाठ करते हो, इसीलिए मैंने उसे सुनने को बुलाया था, मैं अगर जानती कि इसका तुम इतना बुरा मानोगे तो। देवदत्त, बुरा नहीं मान रहा पद्मिनी, कपिल केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरे भाई के बराबर है, 7 जन्मों के पुण्य से कपिल जैसा मित्र किसी को मिलता है, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक दिन केवल तुम्हें, अकेली तुम्हें बिठा कर कविता सुनाऊं, क्या यह इच्छा अनुचित है कि दो एक दिन हम दोनों बिल्कुल अकेले रह सकें, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में न आए? रुककर, अब कपिल आता भी है तो कविता पाठ थोड़े ही होता है, उसके आते ही तुम्हारी कपिल कपिल की रट शुरू हो जाती है। पद्मिनी, यह क्या, कपिल से तुम इस हद तक जलते हो? देवदत्त, मैं कपिल से जलता हूँ? तुम मेरी हर बात का उल्टा अर्थ क्यों लगाती हो पद्मिनी? पद्मिनी हंसकर प्यार से, कितनी जल्दी तुम बुरा मान जाते हो, मैंने तो हंसी में कहा, तुम हंसी की बात बिल्कुल नहीं समझते। देवदत्त, तुम्हारे लिए हंसी होगी पर मेरी तो सांसत हो जाती है। पद्मिनी हंसते हुए, चुप भी रहो, मैं क्या जानती नहीं कि तुम कितने उदार और बड़े दिल वाले हो, तुम्हें किसी से जलन हो यह असंभव है, कल को मैं ही कुएं में डूब जाऊं तो जब तक मेरी लाश पानी पर न उतर आए तब तक तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं आएगा। देवदत्त, पद्मिनी, पद्मिनी, ओह भूल गई, लो कान पकड़ती हूँ, बस अब तो ठीक बचपन से ही बातें कहने की आदत पड़ गई है। सच तुम कितने सुकुमार हो, इतनी कोमलता से भगवान जाने कैसे दिन कटेंगे। सच कहती हूँ तुम अभी तक बिल्कुल बच्चे हो, कभी कभी तो लगता है मेरे बच्चा होने से पहले ही तुम बच्चे के रूप में पैदा हो चुके हो। देवदत्त को ध्यान नहीं देते देखकर पद्मिनी खिड़की के पास जाती है। देवदत्त, हूँ। पद्मिनी, देखो ना, अभी अभी कपिल पर तुम चिढ़ गए, लेकिन क्यों, तुम ही तो मेरे सिंदूर हो, सुहाग हो, मेरे देवता हो। तुमने मेरे जीवन में फूल खिलाए, मेरे सुख के द्वार खोले, फिर भी तुम क्यों झुंझला जाते हो। और वह कपिल, वह इतना भोला है, उसकी हंसी उड़ाने में वक्त कट जाता है, एकदम उजड़ वनमानुष ही है, पर मुझसे बातें करने में लाज से ऐसे लाल हो उठता है जैसे कोई नई दुल्हन हो। देवदत्त हंसकर, लेकिन इस दुल्हन को तो कभी लजाते नहीं देखा। पद्मिनी, इस दुल्हन को लजाना किसी ने सिखाया ही नहीं, अब सीख रही हूँ उस वनमानुष को देखकर। दोनों हंसते हैं। पद्मिनी फिर खिड़की के पास जाती है। देवदत्त स्वागत, सचमुच यह इतनी ना समझ है या जानबूझकर उससे खेल रही है। इससे पहले कभी कपिल लजाता नहीं था, लेकिन अब पद्मिनी को देखते ही पूछ हिलाने लगता है। ऐसे बैठकर पद्मिनी का मुंह ताकता रहता है कि उसके मुख से कोई शब्द धरती पर न गिर जाए। उसकी आंखों में तैरती यह लालसा क्या सचमुच इसे नहीं दिखती। पद्मिनी से, पद्मिनी कपिल को स्त्रियों से न मिलने की आदत नहीं, कपिल को स्त्रियों से मिलने की आदत नहीं, उसने अपनी माँ के सिवा किसी स्त्री से बात नहीं की थी। पद्मिनी, तुम्हारा मतलब उससे बात करने में डर है, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे कपिल तुम्हारा मित्र रहा ही नहीं। देवदत्त उत्तेजित, मेरी हर बात को तुम बिगाड़ती क्यों हो। पद्मिनी, मैंने क्या कहा, आत्मीयता के साथ पास आ बैठती है, क्यों बात बात पर चिढ़ते हो। तुम आज उज्जैन नहीं जाना चाहते तो न सही, कपिल से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। देवदत्त अपनी उत्सुकता को दबाकर, लेकिन तुम्हें दुख होगा। पद्मिनी, मुझे क्यों दुख होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वही करेंगे, याद है पुरोहित ने क्या कहा था, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। उज्जैन फिर कभी चलेंगे, महीने भर बाद ही वहाँ एक बड़ा मेला लगने वाला है, तब चलेंगे, क्यों ठीक है ना, आज की यात्रा रद्द कर देंगे। देवदत्त, तुम्हें निराशा ना हो तो मैं यही चाहूंगा, कपिल से ईर्ष्या के कारण नहीं, मुझे कपिल से रत्ती भर भी ईर्ष्या नहीं।
ओहो।